पृष्ठ संख्या 360, सृजनात्मकता के सहायक कारक, कंडीशंस फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। पुराने समय में लोग मानते थे कि सृजनात्मकता जन्मजात एवं वंशानुगत होती है। यह प्रगति प्रदत्त क्षमता होती है जिसे ईश्वर कुछ ही लोगों को उपहार स्वरूप देते हैं। सृजनात्मकता बालकों में अपने आप स्वप्रेरित एवं स्वलक्षित होती है, जिसके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव तथा उचित वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह कांटों में ही गुलाब खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार से ही चाहे कितना ही खराब वातावरण क्यों ही ना हो, जिन बालकों में भगवान को सृजनात्मकता प्रदान करनी होती है वो कर देते हैं और उनका विकास होता ही है, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। परंतु अब लोग यह मानने लगे हैं कि सृजनात्मकता किसी की बपौती नहीं है और ना ही ईश्वरीय वरदान है, बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने लगन, कठिन परिश्रम एवं प्रयास से इसे प्राप्त कर सकता है। सभी बालकों में सृजनात्मक क्षमता मौजूद होती है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके भीतर छिपे सृजनात्मक गुणों का विकास किया जाए। यदि बालकों को समय पर उचित शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, सुंदर एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाए, उन्हें सृजन के लिए प्रेरित किया जाए, तो सृजनात्मकता का सुंदर ढंग से विकास किया जा सकता है। बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए अग्रांकित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 361, नंबर 1, सही समय, राइट टाइम। सही उम्र में सही समय पर बालकों को सृजनात्मक क्रियाओं के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है एवं परम कर्तव्य है कि वे बालकों के लिए समय निकालें, उनके साथ खेलें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें तथा अपने विचारों को सुनें और उन्हें सृजन के लिए प्रोत्साहित करें। यदि माता पिता बालकों को सही समय पर सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित नहीं करते हैं तो उनकी सृजनात्मक क्षमता दमित हो जाती है। नंबर 2, उत्साहित करना, इनकरेजमेंट। समय समय पर बालकों को सृजनात्मक क्रियाओं के लिए उत्साहित करना चाहिए। बालक जो कुछ नई चीज़ें बनाता है वह अपनी योग्यता अनुसार बनाता है, इसलिए उनकी निंदा नहीं करें और ना ही यह कहें कि कितना खराब, कितना गंदा, कितना फूहड़ बनाया है, बल्कि यह कहें कि बहुत सुंदर बनाया है, कोशिश करोगे तो इससे भी सुंदर बना लोगे। तुम्हारे भीतर तो अक्षय प्रतिभा का भंडार है, सृजन क्षमता का विलक्षण गुण है, तुम में नवीन चीज़ों के निर्माण की अधोशक्ति है। प्रशंसा के ये 2 सुंदर बोल ही बालक को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। नंबर 3, सामग्री उपलब्ध करवाकर, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स। सृजनात्मकता के विकास में विभिन्न सामग्रियों अथवा वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। यदि बालक कुछ नई चीज़ बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं तो उन्हें जरूर देनी चाहिए। उन्हें यह कहकर नहीं झिड़कना चाहिए कि इन वस्तुओं से तुम क्या करोगे, ये फालतू की चीज़ें हैं, इससे सुंदर चीज़ें तो बाजार में मिल जाती हैं, अथवा ये केवल पैसे बिगाड़ने वाली वस्तुएं हैं, इनसे तो व्यर्थ में ही पैसा बर्बाद होगा। वस्तुएं उपलब्ध करवाने में टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए कि आजकल में दिलवा देंगे, परसों ला देंगे आदि आदि। ऐसा करने से बालक के मन में उठ रहे नवीन विचार दमित हो जाते हैं, परिणामतः सृजनशीलता का दमन हो जाता है। इसलिए माता पिता का यह परम कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है कि बालकों को समय पर वस्तुएं उपलब्ध करवाएं। जैसे यदि बालक चित्रांकन या पेंटिंग करना चाहता है अथवा अन्य कोई सजावटी वस्तु बनाना चाहता है तो आप उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध करवाएं, इससे बालक में सृजनात्मकता का विकास होगा। यहाँ तक कि टूटे फूटे एवं अपूर्ण खिलौने भी बालक के सृजनात्मक विकास में सहायक होते हैं। नंबर 4, अनुकूल पारिवारिक वातावरण, फेवरेबल फैमिली एनवायरनमेंट। सृजनात्मकता के विकास में अनुकूल पारिवारिक वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परिवार ही वह संस्था है जो बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बालकों के लिए सुंदर, स्वस्थ एवं मनोहारी वातावरण प्रस्तुत करें ताकि उनमें सृजनात्मकता का सुंदर ढंग से उचित मात्रा में विकास हो सके। उन्हें ना तो कठोर अनुशासन में रखना चाहिए और ना ही उन्हें बहुत अधिक छूट देनी चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियां बालकों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इतना ही नहीं, जब बालकों के पारिवारिक जीवन को नियमबद्ध एवं समयबद्ध कर दिया जाता है अथवा उन्हें हर समय पारिवारिक कार्यों में हाथ बटाने को कहा जाता है तो उनकी सृजनशीलता अवरुद्ध हो जाती है। नंबर 5, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड। माता पिता एवं संरक्षकों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां विकसित हों। ऋणात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां बालकों में अपने अभिभावकों, शिक्षक, साथी समूहों के प्रति घृणा, असहयोग एवं तिरस्कार की भावना पैदा करती हैं। ये स्थितियां सृजनात्मकता के विकास में सदैव ही बाधक सिद्ध होती हैं। नंबर 6, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, इनकरेज क्यूरियसिटी। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपने आसपास घटित होने वाली चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्नों का सही जवाब देना चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो सके। उन्हें प्रश्नों को पूछने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनके मन में मौलिक विचार उत्पन्न होंगे। इसके ठीक विपरीत, यदि उन्हें प्रश्न पूछने पर डांटा फटकारा जाए अथवा उनका उपहास किया जाए तो बालक दोबारा प्रश्न पूछने से घबराएंगे, डरेंगे, फलतः उनके सृजनात्मक क्षमता का अंदर ही अंदर दमन हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 362। नंबर 7, कठोर अनुशासन, टू मच हार्ड डिसिप्लिन। बालकों को अनुशासन में रखना जरूरी है, परंतु उन्हें इतना कठिन और कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए जिससे उनकी सृजनशीलता, कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का गला ही घोंट दिया जाए। इसलिए परिवार एवं स्कूल का वातावरण बहुत अधिक कठोर अनुशासन वाला एवं प्रभुत्वशाली नहीं होना चाहिए। इससे उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है और जब तक बालक स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे तब तक उनमें सृजनात्मकता का विकास नहीं हो सकेगा। नंबर 8, शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा, बाय टीचिंग एंड ट्रेनिंग। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास समुचित ढंग से किया जा सकता है। शिक्षण से बालकों में नई चीज़ों के निर्माण के प्रति रुचि बढ़ती है और वह नई वस्तुओं की रचना में जुट जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक सुगमता, सफलता के अनुभव, उद्देश्यों की प्राप्ति से लाभ आदि प्रवृत्तियां सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। नंबर 9, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर नॉलेज। सृजनात्मकता कभी शून्य में क्रियाशील नहीं होती है, अतः बालकों को पढ़ने लिखने तथा ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। जिन बालकों को पढ़ने लिखने तथा ज्ञान प्राप्त करने का जितना अधिक अवसर मिलता है वह उतना अधिक सृजनशील हो सकता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उतनी ही तेजी से विभिन्न ज्ञान के संयोजन में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहता है, फलतः सृजनात्मकता का विकास होता है। टोड्रा का मानना है कि सृजनात्मकता न केवल जन्मजात गुण है बल्कि यह एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिससे सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कई लोग अपने मन मस्तिष्क में नवीन विचार लाते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, परंतु उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं और ना ही उनका क्रियान्वयन ही कर पाते हैं। अतः उनका सोचना एवं चिंतन करना या मौलिक विचार का मन में उत्पन्न होना सृजनात्मकता नहीं कहलाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि सृजनात्मकता को अभिव्यक्त किया जाए और उसे समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायी बनाया जाए। नंबर 10, प्रतिकूल टीका टिप्पणी, फेवरेबल क्रिटिसिज्म। जब बालकों को अनावश्यक ही बात पर टोका जाता है और उनके कार्यों एवं विचारों पर प्रतिकूल टीका टिप्पणी की जाती है तो उनकी सृजनात्मक क्षमता दमित हो जाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह जो भी सृजन करेगा अथवा नई चीज बनाएगा वह सुंदर नहीं बनेगा और दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बालकों को बात बात पर टोकना नहीं चाहिए। सृजनात्मकता के विरोधी कारक, फेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को बढ़ाने में जहां कई कारक जिम्मेदार हैं वहीं कुछ कारक ऐसे भी हैं जो सृजनात्मक क्षमता को दबा देते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नानुसार हैं। नंबर 1, प्रश्नों का सही जवाब न देना, नॉट गिविंग करेक्ट आंसर। बालक जब अपने माता पिता, संरक्षकों व शिक्षकों से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, परंतु यदि उनके माता पिता एवं संरक्षक उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते हैं अथवा उन्हें डांट फटकार कर या झिड़का कर भगा देते हैं तो बालकों में सृजनशीलता का दमन हो जाता है। अब वे डर के मारे प्रश्नों को नहीं पूछते हैं। नंबर 2, कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित नहीं करने पर, नॉट इनकरेजिंग इमेजिनेटिव पावर। जब बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर कुछ नवीन चीज बनाते हैं, कविताएं रचते हैं, कहानियां लिखते हैं, परंतु यदि माता पिता उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते, निरुत्साहित करते हैं अथवा उनका उपहास करते हैं तो सृजन शक्ति दमित हो जाती है। नंबर 3, बहुत अधिक खिलौने उपलब्ध करा देने से, प्रोवाइडिंग टू मच टॉयज। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि खिलौने जहाँ बालकों के सृजन एवं शारीरिक विकास में मददगार साबित होते हैं, वहीं उनकी अधिकता सृजनशीलता के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। जब माता पिता एवं अभिभावक बालकों को बहुत अधिक और बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने खेलने को देते हैं तो बालक अधिकांश समय तक उन्हें खिलौनों से खेलते रहते हैं और अपना ऊर्जा एवं समय नष्ट करते हैं, परिणामतः उनकी सृजन शक्ति दब जाती है। नंबर 4, रूढ़वादी पारिवारिक माहौल, ट्रेडिशनल फैमिली एनवायरनमेंट। जिन बालकों के माता पिता जितना ही अधिक रूढ़िवादी एवं परंपरागत होते हैं, वे अपने बालकों को अपनी ही तरह रूढ़िवादी बनाना चाहते हैं और इसी दिशा में प्रयास करते हैं। वे बालकों को अपने ही पद चिन्हों पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, जिनसे उनकी सृजनात्मकता में कमी आ जाती है। इसी प्रकार जिन बालकों को अपने माता पिता से बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त होता है अथवा जो बहुत अधिक कठोर अनुशासन एवं प्रभुत्वशाली वातावरण में रहते हैं, उन बालकों में भी सृजनशीलता का दमन हो जाता है। नंबर 5, बहुत अधिक छूट अथवा आज़ादी, टू मच फ्रीडम। जो बालक अपने मन में जितना अधिक खेलते कूदते हैं या समय व्यतीत करते हैं, उनमें उतना ही अधिक सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। मगर यह भी याद रहे, बहुत अधिक छूट अथवा आज़ादी बालकों की सृजनशीलता में बाधक बन जाती है। हर समय टिप्पणी करते समय बालकों को रोकते रहना और उनके कार्यों में दखलंदाजी करने अथवा प्रतिकूल टिप्पणी में सृजनात्मकता दमित हो जाती है। पृष्ठ संख्या 364, सृजनात्मकता के विरोधी कारक उंगलियों पर, फेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्रिएटिविटी ऑन फिंगर टिप्स। सृजनात्मकता के विरोधी कारक, प्रश्नों का सही जवाब न देना, कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित न करना, बहुत अधिक खिलौने उपलब्ध कराना, रूढ़िवादी पारिवारिक वातावरण, बहुत अधिक छूट अथवा आज़ादी। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में बालक विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति करते हैं। बालकों की कुछ प्रमुख सृजनात्मक क्रियाएँ निम्नानुसार हैं। नंबर 1, नाटकीय खेल, ड्रामेटिक प्ले। नाटकीय खेलों को मेक बिलीव प्ले भी कहते हैं। नाटकीय खेलों के माध्यम से बालक अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इन खेलों में उन्हें बड़ा मजा आता है। बालक खूब खुश होकर अभिनय करते हैं और ड्रामा में भाग लेते हैं। इससे उन्हें अपार संतुष्टि एवं तृप्ति मिलती है। बालक नाटकीय खेलों, जीवंत, मनोहारी, लुभावनी एवं आकर्षण खेलों को अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को बेहद ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कई बालक बालिकाएं चोर सिपाही, राजा रानी, डॉक्टर मरीज, ट्रेन ट्रेन, टीचर टीचर के खेल खेलते हैं तथा उनकी भूमिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। बालक जिस शिक्षक को कक्षा में अधिक पसंद करते हैं, उन्हीं की भूमिकाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनका बोलने का ढंग, शैली, टोन एवं लहजा, चेहरे का हाव भाव भी उन्हीं की तरह होता है और वे उन्हीं की तरह एक्शन करते हैं। पृष्ठ संख्या 365, टीचर विद्यार्थी खेल में। एक बालक शिक्षक बनता है तो दूसरे बालक विद्यार्थी बनते हैं। बालक के हाथ में छड़ी होती है और वह छड़ी से दूसरे बालक को डराता है। इसी प्रकार डॉक्टर मरीज वाले खेल में एक बच्चा डॉक्टर बनता है और दूसरा मरीज। डॉक्टर की तरह ही बालक मरीज बालक का चेकअप करता है। दवाइयों की कुछ पुड़ियां जो केवल खाली कागज को ही मोड़कर तैयार किया गया होता है, उन्हें देता है और कई जरूर हिदायतें देता है। इस प्रकार बालक समाज में चिकित्सक एवं शिक्षक के महत्व को स्वीकारता है और दूसरों के समक्ष सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बालिकाएँ गुड्डे गुड़िया की शादी रचाती हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह गुड़िया को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें सजाने संवारने का काम करती हैं। वे बालक जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वे प्रभुत्वशाली एवं कठिन भूमिकाओं को निभाते हैं तथा दूसरे बालक छोटी एवं सरल भूमिकाओं को निभाते हैं। अधिक बुद्धिमान बच्चों को इन खेलों में मजा आता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां नाटकीय खेलों में अधिक खेलती हैं। उनका नाटकीय खेल मुख्यतः घर परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाओं से ही संबंधित होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने, भोजन परोसने, घर सजाने, गुड़िया को दुलारने, नहलाने आदि। नाटकीय खेलों में भाग लेने के लिए बालकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनमें कल्पना एवं सृजन शक्ति का विकास हो सके। इन खेलों से बालक के भीतर छिपी नकारात्मक संवेग दूर होते हैं और उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। हरलाक ने इस प्रकार के खेलों को पुनरुत्पादन सृजन, रिप्रोडक्टिव क्रिएशन की संज्ञा दी, जो मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। नर्सरी कक्षा के बालक नाटकीय खेलों में अधिक भाग लेते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वे नाटकीय खेलों में कम भाग लेने लगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह खेल बच्चों वाले खेल, बेबी लिश प्ले होता है। अब उनका संपर्क दूसरे बालकों के साथ बढ़ता है, इसलिए वे उनके साथ समायोजन स्थापित करने में समय व्यतीत करते हैं और उनके पसंद के खेलों में भाग लेते हैं। परिणामस्वरूप वे गेंद, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्केटिंग, साइकिलिंग आदि करने में लग जाते हैं। नाटकीय खेलों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामेटिक प्ले इन पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। नंबर एक, नाटकीय खेलों से बालक को असीम आनंद एवं अपार संतुष्टि की अनुभूति होती है। नंबर दो, बच्चों का उबाऊपन एवं बोरियत दूर होती है। नंबर तीन, जब बालक नाटकीय खेलों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वे उन्मुक्त होकर चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं और अपने मन से डायलॉग बोलते हैं। फलतः उनका वाणी विकास होता है, वह दूसरे बालकों के समक्ष खुलकर बोलते हैं। यदि उनकी आवाज़ में हकलाहट या तुतलाहट होती है तो वे स्वप्रेरणा से उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ संख्या 366। इतना ही नहीं, वे मूक भाषा, हाव भाव एवं संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी गुप्त भाषा में वृद्धि हो जाती है। नंबर चार, नाटकीय खेलों में बालक भिन्न भिन्न पात्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इससे उनके कार्यों के प्रति निष्ठाओं में ईमानदारी की भावना जागृत होती है। नंबर पाँच, नाटकीय खेलों के माध्यम से बालक अपनी प्रशंसा चाहते हैं। जब दूसरे बालक उसकी भूमिका को सराहते हैं तो उसमें आत्मविश्वास उपजता है, उसे कार्य से संतुष्टि मिलती है। नंबर छः, नाटकीय खेलों को खेलने के लिए बालक उसी प्रकार का वस्त्र पहनता है जिसकी वह भूमिका अदा करने जा रहा है, जैसे शिक्षक, चिकित्सक, वकील, चोर, सिपाही, माता पिता आदि। उनमें वस्त्रों के प्रति सेंस ऑफ ह्यूमर की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर सात, नाटकीय खेलों को बालकों में सहयोग, मित्रता, सौहार्दता, करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। इससे उनका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। नंबर आठ, नाटकीय खेलों में बालक उन्हीं पात्रों को खेलते हैं जो उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं, वे बुरे पात्रों को करना पसंद नहीं करते हैं। इससे उनमें अच्छा बुरा के अंतर का ज्ञान हो जाता है, जैसे राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेल में चार बालक एक साथ मिलकर खेलते हैं। एक बालक राजा, एक मंत्री, एक सिपाही एवं एक चोर होता है। सिपाही बना बालक बड़ी चतुराई से चोर को पकड़ लेता है और उसे राजा के पास लेकर जाता है तथा दंड देने के लिए कहता है। राजा मंत्री को बुलाकर दंड के बारे में सलाह देता है और मंत्री के सुझाव पर चोर बालक की पिटाई का दंड मिलता है। इस प्रकार बालक को विभिन्न पात्रों के कार्यों का ज्ञान हो जाता है तथा अच्छाई बुराई का भी पता चल जाता है कि चोर बनना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। नंबर दो, रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले। सृजनात्मकता में रचनात्मक खेलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब बालक 5 से 6 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी रुचि नाटकीय खेलों के प्रति कम एवं रचनात्मक खेलों के प्रति बढ़ने लगती है। अर्थात जब बालकों में नाटकीय खेलों की समाप्ति होती है तब उनमें रचनात्मक खेलों का विकास होता है। रचनात्मक खेलों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके साथी खेल के साथी हों। बालक अकेले ही रचनात्मक खेलों को खेल सकता है, जैसे चित्रांकन अथवा पेंटिंग के लिए बालक को किसी दूसरे साथी बालक की जरूरत नहीं होती। वह अकेले ही पेपर, पेंसिल, कलर, ब्रश आदि से चित्रांकन कार्य करता है और आनंदित होता है। वह अपने हाथों से बनाए गए चित्रों को दूसरों को दिखाता है, इससे बड़ी खुशी एवं संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार उसमें चित्रांकन के प्रति रुचि विकसित होती है। शुरू शुरू में बालक बालू, मिट्टी, लकड़ी के बुरादे, कंकड़, पत्थर, शीशियाँ, टिन के डिब्बे आदि से रचनात्मक खेलों को करना सीखता है। बाद में वह पेंटिंग, ड्राफ्टिंग, चित्रांकन, क्राफ्टिंग आदि क्रियाएं करना सीखता है। अब वह कार्टून बनाने लग जाता है, गणितीय सवालों को हल करने में लग जाता है तथा विभिन्न पहलुओं को बूझने लगता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनके रचनात्मक खेलों में और भी अधिक निखार आने लगता है। अब वह डैम, नदियाँ, गुफाएँ, मंदिर, सड़क, झोपड़ी आदि बनाने लग जाता है। वह विभिन्न रंगों से कागज के फूल, पत्तियाँ एवं दीवार पर सजाने के लिए विभिन्न आकृतियाँ बनाने लग जाता है। विभिन्न प्रकार के फूल बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, पेपर कटिंग करके उसे फेविकॉल गोंद से चिपकाना आदि क्रियाएँ बालक सीख जाते हैं। वे अपनी बनाई हुई चीज़ों को बड़े ही शौक से अपने दोस्तों, माता पिता एवं परिवारजनों को बताते हैं और उन्हें दिखाते हैं। परंतु यदि बालक की दृष्टि में उनके बनाए हुए वस्तुएं खराब हो जाते हैं तो उन्हें छुपा लेते हैं और कई बार तो फाड़ कर फेंक देते हैं। पृष्ठ संख्या 367। नंबर 3, चित्रांकन करना, ड्राइंग। चित्रांकन करना भी एक प्रकार का रचनात्मक खेल ही है। जब बालक के हाथ में पेपर, पेंसिल, रबर, क्रेयान आदि को दे दिया जाता है तो वे पेपर पर टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं और उसमें मनपसंद रंग भरते हैं। प्रारंभ में बालक जिन चीज़ों को बनाते हैं वे अक्सर किताबों में छपे चित्रों का ही नकल करते हैं, क्योंकि उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना नहीं होता है कि अपने मन से उन्हें बना सकें। परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ही साथ उनके हाथ की पेशियों में परिपक्वता आती है, मानसिक विकास होता है, परिणामतः उनके चित्रों में मौलिकता आने लगती है। अब वे चित्रों को अपनी कल्पना से बनाने लगते हैं, जैसे भारत का तिरंगा, जहाज, नाव, फलों से भरी हुई टोकरी, आदमी, सूरज, फूल, पत्तियां, पशु पक्षी आदि के चित्र। यदि विद्यालय में ड्राइंग एंड पेंटिंग के शिक्षक होते हैं तथा बालकों में ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखाया जाता है तब उनके बनाए गए चित्रों में और अधिक निखार आ जाता है। सामान्यतः छोटे बालक आदमियों के चित्र बनाने में अधिक रुचि लेते हैं। बड़े बच्चे नदी, सागर, झील, तालाब, पहाड़, जंगल, झोपड़ी, पशु पक्षी आदि के चित्र बनाने में रुचि लेते हैं। अब वे अपने सृजन एवं कल्पना शक्ति से नहर, डैम, आकाश, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जंगल में विचरण कर रहे हिरण, बाघ आदि के चित्र भी बनाने लग जाते हैं। बड़े बालकों की रुचि कार्टून बनाने में भी रहती है, मगर वे कार्टून उन्हीं लोगों के बनाते हैं जिनसे उन्हें सख्त नफरत होती है अथवा जिन्हें वे नापसंद करते हैं। विशेषकर बालक अपने उन शिक्षकों तथा साथियों का कार्टून बनाते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। प्रारंभ में बालक चित्रों को बनाते समय मोम कलर का प्रयोग करते हैं, फिर पेंसिल कलर तथा वाटर कलर और बाद में स्केच पेन एवं फैब्रिक कलर का प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे बाद में वे तैलीय रंगों का भी इस्तेमाल कलर करते हैं। चित्रांकन की क्रियाएं बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद ही समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि जिन बालकों में चित्रांकन के प्रति रुचि एवं शौक होता है वह आयु वृद्धि एवं अनुभव के साथ बढ़ते जाते हैं। परिणामतः बालक बड़ा होकर एक महान चित्रकार बन जाता है जिसकी ख्याति दूर दूर के देशों तक फैल जाती है। नंबर 4, काल्पनिक साथी। जब बालक अपनी कल्पना से किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर को अपना साथी चुनता है तो उससे उसके मन को हर एक बात को बताता है तो वह उनका काल्पनिक साथी कहलाता है। काल्पनिक साथी उसके सच्चे दोस्त की तरह होता है जिसे वह अपनी सभी गुप्त बातें और समस्याएं बताता है। इससे उसे असीम आनंद एवं अपार हर्ष की प्राप्ति होती है। पृष्ठ संख्या 368। काल्पनिक दोस्त अक्सर उन बच्चों की तरह होते हैं जिन्हें अकेले रहना पड़ता है अथवा जिनके दोस्त कम होते हैं। वे अपने मन की बातें काल्पनिक दोस्तों को ही बताकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। कई बालक तो आप अकेले में पढ़ते समय या खेलते समय बड़बड़ाते हुए सुन सकते हैं। वह बालक अकेला नहीं बड़बड़ाता है, बल्कि अपने काल्पनिक साथी से अपने मन की बातें बताता है। वह इस तरह से पढ़ता है मानो दूसरा साथी सुन रहा हो। ऐसा बालक कदापि अकेला महसूस नहीं करता है, बल्कि उसे ऐसा आभास होता है कि उसके काल्पनिक साथी सदैव ही उसके साथ हैं। इससे उसे खुशी मिलती है, मगर उसका काल्पनिक साथी कौन है इसके बारे में वह कुछ भी बताना नहीं चाहता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि साधारण बुद्धि के बालकों की अपेक्षाकृत कुशाग्र बुद्धि के बालकों को काल्पनिक साथी अधिक होते हैं। वे पढ़ते लिखते समय अथवा गणित के प्रश्नों को हल करते समय काल्पनिक साथी का सहारा लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। स्केटर ने अपने अध्ययन में पाया कि तीव्र बुद्धि के बालकों में, जिनमें लेखन संबंधी सृजनात्मक क्षमता अधिक होती है, उनके काल्पनिक साथी भी अधिक होते हैं। उसके अतिरिक्त इन बालकों के भी काल्पनिक साथी अधिक होते हैं जिनके व्यक्तित्व में आई कठिनाइयां या मुश्किलें अधिक होती हैं तथा जिनके जीवन में बाल्यावस्था से ही परेशानियां आती रहती हैं। सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाने पर अथवा बालक काल्पनिक साथी बना लेता है। कायरता, भय, आत्मसम्मान की कमी, अतिसंवेदनशीलता, अत्यधिक उत्सुकता, आत्माभिव्यक्ति की कमी आदि की स्थिति में बालक काल्पनिक साथी से बातचीत करते सुना जाता है। बीबी गोल्डनर 1962, ईबी हायंस 1970, स्केटलर सीएफ 1964 ने अपने अध्ययनों में यह स्पष्ट ज्ञात किया है कि सुसंजित एवं प्रफुल्लित बालकों के काल्पनिक साथी कम होते हैं, मगर उन बालकों के काल्पनिक साथी अधिक होते हैं जो भय, कायरता, अति संवेदनशीलता आदि संवेगों से ग्रसित होते हैं। यद्यपि काल्पनिक साथी तो बालकों को सच्चे साथी की तरह सुख मिलता है और उनका अकेलापन दूर होता है, मगर यह अकेलापन दूर करने का कोई सर्वोत्तम साधन नहीं है। यदि बालकों का काल्पनिक साथी किशोरावस्था एवं युवावस्था तक बना रहता है, तब व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में कई कठिनाइयां आ जाती हैं। नंबर 4, दिवा स्वप्न, डे ड्रीम। न केवल बालक बल्कि किशोर भी दिवा स्वप्न से अपने आप को संलग्न पाते हैं। यह बाल्यावस्था की अति महत्वपूर्ण सृजनात्मक क्रियाएं हैं। दिवा स्वप्न से बालकों को अपार सुख, आनंद एवं संतुष्टि मिलती है। थोड़ी के लिए ही सही, मगर वे तनाव मुक्त हो जाते हैं, उनकी बोरियत दूर होती है, वे यथार्थ से हटकर कल्पना लोक में विचरण करते हैं और जैसा चाहें वैसा कल्पना करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। वे काल्पनिक दुनिया में कभी तो अमिताभ बच्चन की तरह महान नायक बनना चाहते हैं, तो कभी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन बनना चाहते हैं। कभी जिले के कलेक्टर बनकर भ्रष्टाचार की दुनिया का सफाया करते हैं, तो कभी डॉक्टर बनकर खूब धन दौलत एवं यश कमाते हैं। इस प्रकार बालक अपनी काल्पनिक दुनिया में ही सृजन करते हैं, जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। पृष्ठ संख्या 369, दिवा स्वप्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ डे ड्रीमिंग। दिवा स्वप्न को मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, जीत के नायक वाला दिवा स्वप्न, कॉन्करिंग हीरो डे ड्रीम्स। इस प्रकार के दिवा स्वप्न देखने वाले बालक अपनी कल्पना शक्ति से अपने आप को वास्तविक जिंदगी की तरह ही पाते हैं, जिनमें उनकी भूमिका प्रमुख एवं प्रभुत्वशाली होती है। कभी वे अपनी काल्पनिक दुनिया में सुंदर सा राजकुमार होते हैं, तो कभी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के उड़ाते नजर आते हैं। वे कल्पना में हमेशा अपने आप को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नंबर 2, सहनशील अथवा पीड़ित नायक वाला दिवा स्वप्न। इस प्रकार के दिवा स्वप्न में वे बालक देखते हैं जिनके साथ अन्याय एवं दुर्व्यवहार किया जाता है, जिन्हें बालक विद्यालय में शिक्षकों से, घर में माता से, भाई बहनों से हमेशा ही डांट फटकार मिलती है और वह बालक उन्हें चुपचाप सहन करता है। ऐसे बालक अपनी कल्पना में सत्य एवं धर्म की रक्षा हेतु कार्य करते नजर आते हैं और अंत में उसी की जीत होती है। वह बालक दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित करता है और फिर सभी लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं। नंबर 3, काल्पनिक अवास्तविक दिवा स्वप्न, इमेजिनरी इनवैलिड डे ड्रीम्स। यह भी पीड़ित सहनशील नायक वाला दिवा स्वप्न देखने वालों की तरह ही होता है। अक्सर इस प्रकार के दिवा स्वप्न वे बालक देखते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग होते हैं, वे अपनी काल्पनिक दुनिया में दूसरे सामान्य बच्चों के संग खेलते कूदते उछलते कूदते नजर आते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में सामान्य क्रियाओं को कर पाने में असमर्थ होते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जीत के नायक वाला दिवा स्वप्न देखने वाले वे होते हैं जो खुशमिजाज एवं जिंदा दिल होते हैं। इनका व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन भी अच्छा होता है। इसके विपरीत जिन बालकों का सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है अथवा निम्न स्तर का होता है, वे सहनशील पीड़ित नायक वाला स्वप्न देखते हैं तथा इमेजिनरी इनवैलिड डे ड्रीमर होते हैं। वयः संधि अवस्था में बालक अक्सर समाज विरोधी गतिविधियों से संबंधित दिवा स्वप्न देखते हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन असंतुलन के कारण उन्हें परिवार एवं समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में परेशानी आती है। दिवा स्वप्न का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ डे ड्रीमिंग। नंबर एक, दिवा स्वप्न मनोरंजन का एक साधन है जिसके माध्यम से बालक खुशी का अनुभव करता है। वह अपनी कल्पना में ही अपने आप को विजयी महसूस करता है। अतः दिवा स्वप्न से बालक उन सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है जिसे वह वास्तविक जीवन से प्राप्त नहीं कर पाता है। नंबर दो, बालक जब अपने वास्तविक जीवन से निराश, उदास, क्रोधी, निरुत्साहित हो जाता है, तो वह इन सभी नकारात्मक संवेगों को दिवा स्वप्न के माध्यम से दूर करता है, जिससे उसकी निराशा एवं उदासी दूर हो जाती है और वह तरोताजा महसूस करता है। नंबर तीन, बालक दिवा स्वप्नों में अपनी उन सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है जिसे वह निजी जीवन में कभी नहीं कर पाता है। नंबर चार, दिवा स्वप्न देखने से बालकों में उत्तेजना प्रकट होती है और उसमें नई शक्ति, नवीन स्फूर्ति एवं अक्षय ऊर्जा का संचार होता है। वह उस ऊर्जा का उपयोग वास्तविक जीवन में भी करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। नंबर पाँच, बालक दिवा स्वप्न में उन सभी कार्यों को पूरे उत्साह से कर दिखाता है जिसे शायद ही कभी वास्तविक जीवन में कर पाए। इस प्रकार वह अपने कल्पना लोक में विचरण कर अपने सभी अवांछित एवं नकारात्मक संवेगों से मुक्ति पा लेता है। यह भी ध्यान रहे, जो बालक केवल दिवा स्वप्न ही देखता है और वास्तविक जीवन में साकार करने की चेष्टा नहीं करता, उसे व्यवहारिक जीवन में सफलता नहीं मिलती है। फलतः उसका व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ईबी हरलॉक के अनुसार एक्सक्लूसिव डे ड्रीमर्स रेयरली हैव गुड सेल्फ आर सोशल इंसाइट। दिस इंटेंसिफाइज पुअर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। दिवा स्वप्न देखने वाले बालक स्वयं की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। उनकी खेलों के कार्य के प्रति भी रुचि कम होती है। पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगता। इस कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी उत्तम ढंग से नहीं हो पाता है। उसके साथ ही कई बार दिवा स्वप्न की स्थिति में तीव्र संवेग उत्पन्न होने लगते हैं जो बालक के शरीर के होम्योस्टेटिस को गड़बड़ा देते हैं। परिणामतः बालक मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। नंबर पाँच, हास्य भाव उत्पन्न करना, ह्यूमर प्रोडक्शन। हास्य भाव भी बाल्यावस्था की एक प्रमुख सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। हास्य भाव के मुख्य दो पहलू होते हैं। नंबर एक, हास्य भाव वाले व्यक्ति में हास्य भाव का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता होती है। नंबर दो, वह हास्य को एक बार सुनने के बाद उसी भाव के साथ दोहरा देता है। उपरोक्त दोनों ही हास्य भाव बालकों के सामाजिक समायोजन में मददगार सिद्ध होते हैं। हास्य भाव वाले बालकों में स्वतः ही लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है और वे उसकी हास्य बातों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अनेक बार बालक अपनी बनावटी मीठी आवाज से शब्दों एवं वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत व भ्रष्ट उच्चारण करके श्रोता के बीच इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें हंसी आ जाती है। बालक अक्सर उन्हीं लोगों का हास्य भाव द्वारा कमेंट प्रस्तुत करते हैं जिनसे वे अधिक जुड़ते हैं। वे अपना अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा मोटा भद्दा सा चित्र बनाते हैं, कागज कॉपी या प्लेट पर बनाते हैं तथा उसे दूसरे साथियों को दिखाते हैं। इतना ही नहीं, बालक दूसरे बालकों या शिक्षकों के कार्यों, व्यवहारों एवं एक्शन की नकल करते हैं और उन्हीं की तरह बोलते हैं, हंसते हैं, एक्टिंग करते हैं, चेहरे के हाव भाव प्रस्तुत करते हैं जिन्हें सुनकर दूसरे बच्चों को हंसी आ जाती है। पूरा वातावरण हंसी के फवारे से प्रफुल्लित हो जाता है। कई बार बालक केले के छिलके से फिसलकर गिरने का नाटक करते हैं और दूसरे बालकों को खूब हंसाते हैं। बालक कॉमिक्स पढ़कर भी हास्य भाव उत्पन्न करते हैं। वे कॉमिक्स को इस तरह से, इस ढंग से पढ़कर सुनाते हैं कि दूसरे लोगों को हंसी आ जाती है। फिल्मों में तो हंसी मजाक वाले पात्रों को विशेष कर रखा जाता है जो दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। नंबर 6, कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग। कई बालक दूसरे बालकों के समक्ष कहानी कहकर अथवा कविता सुनाकर अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यदि श्रोता एवं उसके साथी कहानी की प्रशंसा करते हैं तब बालक में कहानी कहने के तरीकों में प्रखरता एवं निपुणता आती है, उसके कहानी कहने की कला में उत्कृष्टता आती है। अब बालक न केवल कहानी कहता है बल्कि कई कहानियों की रचना भी करने लगता है। अब उसकी कल्पना शक्ति इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वह कोई चित्र देखकर ही सुंदर कहानी लिख लेता है। इस प्रकार वह अधूरी पहेलियों को बुझाने लगता है। प्रारंभ में बालक जिन कहानियों को कहता है वह पुनरोत्पादक रिप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बालकाल में उन कहानियों को अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से सुना हुआ होता है अथवा किसी अखबार या किताब में पढ़ा होता है। परंतु बाद में यही गुण सृजनात्मकता हो जाती है और वह अपने कल्पना शक्ति के सहारे से तरह तरह के रोचक कहानियां कहने लगता है। नंबर 7, उपलब्धि के लिए आकांक्षाएं, एस्पिरेंट्स फॉर अचीवमेंट। प्रत्येक बालक के मन में कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की प्रबल इच्छा होती है, इसे ही आकांक्षाएं कहते हैं। जब बालक बड़े होकर स्कूल जाने लगते हैं तो शिक्षक एवं माता पिता उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे। कोई बालक जवाब देता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है अमिताभ बच्चन की तरह महान अभिनेता बनूंगा, आदि आदि। बालक की यही आंतरिक इच्छा उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे यह नई दिशा देती है, एक नया मार्ग प्रशस्त करती है जिस पर चलकर बालक अपनी हार्दिक इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। कई बालक तो माता पिता अथवा शिक्षक द्वारा जब यह पूछते हैं कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे तो बालक इधर उधर झांकने लगता है, वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या जवाब दे। जब माता पिता उसे प्रेरित करते हैं और बताते हैं तुम बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है क्योंकि मैं तुम्हें एक डॉक्टर अथवा इंजीनियर के रूम में देखना चाहती हूँ, इस प्रकार बालक के भविष्य निर्माण के प्रति योजनाएं बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आकांक्षा अंग्रेजी के एस्पिरेशन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक प्रबल इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा करना आदि। सामान्य बोलचाल में आकांक्षा को अभिलाषा का ही पर्यायवाची माना जाता है। मनोवैज्ञानिक ने जहां अभिलाषा के तात्पर्य सम्मान पाने की इच्छा या उपलब्धि प्राप्ति की प्रबल इच्छा से है, वहीं आकांक्षा शब्द से आशय लक्ष्य पाने की ओर अग्रसरित होने से है। वर्तमान में व्यक्ति जिस पद पर आसीन है वह उसकी आकांक्षा नहीं है बल्कि वह भविष्य में किन पद पर आसीन होना चाहता है अथवा भविष्य में क्या बनना चाहता है वही उसकी आकांक्षा है। पृष्ठ संख्या 372, बालकों में उपलब्धि की आकांक्षाएं तुरंत अथवा आज व कल के लिए ही होती हैं। जैसे जब बालक कोई अच्छा सा कार्य करता है अथवा कोई सुंदर सी पेंटिंग बनाता है तो वह चाहता है कि माता पिता एवं उसके साथी उसकी पेंटिंग की प्रशंसा करें, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है अब वह सुंदर पेंटिंग बनाकर खुश नहीं होता है और न ही प्रशंसा का भूखा होता है बल्कि अब वह भविष्य निर्माण के बारे में सोचता है और वह यह चिंतन करता है कि किस तरह से कितनी अधिक मेहनत की जाए, किन किन से गाइडेंस ली जाए, किन किन किताबों को पढ़ा जाए ताकि वह भविष्य में एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बन सकेगा। इस प्रकार वह अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए ही कठिन परिश्रम करता है। उसका कार्य, व्यवहार, श्रम सभी कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर ही अग्रेसित होता है। कई बालक उपलब्धि की आकांक्षाएं कहकर शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं तो कुछ बालक उसे मन में छिपाकर रखते हैं। बालक की आकांक्षाएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी। जब बालक को अपने जीवन में सफलता मिलती है तो वह धनात्मक आकांक्षाओं का निर्माण करता है, परंतु यदि बालक को कदम कदम पर असफलताएं ही हाथ लगती हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो उनमें ऋणात्मक आकांक्षाओं की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक भी हैं जो उपलब्ध की आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे नंबर एक, बालक की आंतरिक इच्छाएं जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर दो, विगत अनुभव पास्ट एक्सपीरियंसेस। यदि बालक को विगत महीनों अथवा वर्षों के बावजूद सफलता मिली है तो उसकी आकांक्षाएं प्रबल हो जाती हैं, परंतु यदि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी बालक को असफलता ही हाथ लगती है तो बालक की आकांक्षाएँ परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे यदि बालक इंजीनियर बनना चाहता है मगर वह इंजीनियरिंग की कंपटीशन में बार बार असफल हो जाता है तो उसकी इंजीनियर बनने की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। अब वह बीएड करके शिक्षक या नेट स्लेट करके लेक्चरर अथवा प्रतियोगी परीक्षा देकर आईएएस आरएएस आईपीएस आदि बनने की सोचेगा, न कि इंजीनियर बनने की। नंबर तीन, व्यक्तिगत प्रतिमान पर्सनालिटी पैटर्न। यह बालकों की आकांक्षाओं के प्रारूप एवं सामर्थ्य दोनों को ही प्रभावित करता है। नंबर चार, व्यक्तिगत मूल्य पर्सनल वैल्यू। बालक यह निर्धारित करता है कि कौन सी आकांक्षाएं अधिक लाभकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या 373। नंबर पाँच, लिंग सेक्स। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा उपलब्धि के लिए आकांक्षाएं अधिक होती हैं। नंबर छः, सामाजिक आर्थिक कारक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। वे बालक जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च एवं मध्यम वर्ग की होती है उनकी आकांक्षाओं का स्तर भी ऊंचा होता है। निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के बालकों की आकांक्षाएं भी निम्न होती हैं। नंबर सात, व्यक्तिगत रुचियां पर्सनल इंटरेस्ट। उपलब्धि के लिए आकांक्षाएं व्यक्तिगत रुचियों पर भी निर्भर करती हैं। यदि बालक को गणित पढ़ने में रुचि है और उसे माता पिता जबरदस्ती इतिहास या राजनीति विज्ञान पढ़ाना चाहें तो बालक जीवन में सफल नहीं हो पाता है। नंबर आठ, प्रजाति आधार रेशियल बैकग्राउंड। प्रजाति आधार भी उपलब्धि की आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे ब्राह्मण एवं उच्च जाति के बालकों की आकांक्षाओं का स्तर निम्न जाति के बालकों की अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। कुछ प्रमुख कारक निम्नानुसार हैं। नंबर एक, लिंग भेद सेक्स डिफरेंसेस। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा सृजनात्मकता शक्ति अधिक होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें अपने माता पिता संरक्षकों से अधिक छूट मिलती है। वे अधिक समय तक स्वतंत्र रहते हैं और अपनी मर्जी का काम करते हैं, अतः उनमें स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। नंबर दो, परिवार का आकार फैमिली साइज। परिवार की संरचना एवं उसके आकार पर भी सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छोटे एवं एकाकी परिवार स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली में पलने बढ़ने वाले बालकों की सृजनात्मक क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उनके पालन पोषण देखरेख शिक्षा दीक्षा आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उन्हें अधिक सुविधाएं मिलती हैं। वहीं बड़ा एवं संयुक्त परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों की सृजनात्मक क्षमता कम होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से बालकों के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा आदि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर तीन, बालकों का जन्मक्रम बर्थ ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन। बड़े बालकों की अपेक्षा छोटे एवं मझले संझले बच्चों में अधिक सृजनात्मक क्षमता होती है, क्योंकि बड़े बालकों पर अधिक नियंत्रण रहता है अथवा उसे बहुत ही अधिक लाड प्यार से पाला जाता है। दूसरे, भाई बहनों की देखभाल करने एवं घर के कामों में हाथ बटाने की भी जिम्मेदारी होती है, इस कारण उसमें सृजनात्मक क्षमता कम हो जाती है, मगर यह हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी बड़े बालक अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक सृजनशील होते हैं। नंबर चार, शहरी वातावरण अर्बन एनवायरनमेंट। शहरी वातावरण में रहने एवं पलने बढ़ने वाले बालकों को सीखने एवं नई नई बातें जानने का अधिक अवसर मिलता है, इस कारण वे अधिक सृजनशील होते हैं। ग्रामीण बालकों को उतनी अधिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यद्यपि ग्रामीण बालकों में सृजनात्मक क्षमता बहुत अधिक होती है, परंतु उपयुक्त परिवेश न मिलने के कारण उनकी सृजनात्मकता का निखार नहीं हो पाता है। पृष्ठ संख्या 374। नंबर पाँच, माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका रोल ऑफ पेरेंट्स। सृजनात्मकता के विकास में माता पिता एवं अभिभावकों का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बालक अधिकांश समय तक अपने माता पिता के साथ ही समय व्यतीत करते हैं। अतः माता पिता ही बालक के प्रथम गुरु होते हैं, इस कारण उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बालक के सृजनशीलता के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें समुचित वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उनकी जिज्ञासा को शांत करें और उन्हें नए नए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, उन्हें रचनात्मक खेल खेलने के लिए प्रेरित करें और उनका सहयोग करें। व्यर्थ की वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना सिखाएं, जैसे गेहूं की सीकियों से पंखा बनाना, माचिस की खाली डिब्बों से सजावटी सामग्री बनाना, बेकार पड़ी चूड़ियों से वॉल हैंगिंग बनाना, सुतलियों से पावदान बनाना, पुराने कपड़ों से बिस्तर थैला आदि बनाना। माता पिता को चाहिए कि वे बालक को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें ताकि बालक अपनी बातों की अभिव्यक्ति खुलकर कर सके और लक्ष्य पाने के लिए प्रयास करे। बालकों द्वारा बनाई गई नवीन रचना, नूतन कृति, कहानी, कविता, चित्रांकन, पेंटिंग आदि की सराहना करें और उसे सही मार्गदर्शन दें। नंबर 6, विद्यालयी वातावरण, स्कूल एनवायरनमेंट। सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय शिक्षक एवं सहपाठियों का अमूल्य योगदान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षक ही बालक के व्यक्तित्व को निखारते हैं, उनमें सृजन शक्ति की क्षमता विकसित करते हैं। यहाँ कबीर की कुछ पंक्तियाँ तर्कसंगत लगती हैं। शिष्य कुंभ है गुरु कुम्हार, घर घर काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। अर्थात गुरु शिष्य का संबंध घड़ा और कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर स्वरूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी बालक के सुंदर व्यक्तित्व की रचना करता है। वह उसके भीतर व्याप्त दुर्गुणों को दूर करता है और सद्गुणों का विकास करता है। अतः शिक्षक का यह परम दायित्व है कि वह बालकों को सृजनशीलता के लिए प्रेरित करे और उसे उचित अवसर दे। विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ ही शैक्षणेतर एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाए, जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, वाद विवाद, चित्रांकन, ड्राइंग व पेंटिंग आदि। इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न हॉबी क्लासेस चलाई जाती हैं, जैसे कैनिंग, खिलौने बनाना, कढ़ाई बुनाई, बढ़ई गिरी, बिजली के सामानों के उपकरणों की मरम्मत, अचार बनाना, सॉस बनाना, जेल, जेली, मुरब्बा, मार्मलेड बनाना, संगीत वादन का प्रशिक्षण, कंप्यूटर का प्रशिक्षण आदि। इन कक्षाओं के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। समय समय पर वाद विवाद, आशुभाषण आदि आयोजित कर बालकों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं। बालकों को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। खेलने से शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक, चारित्रिक, नैतिक आदि विकास होता है। पृष्ठ संख्या 375। नंबर 7, शिक्षक का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। सृजनात्मकता के विकास में शिक्षकों का ही बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। टोरेंस ने शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। नंबर 1, बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। यदि बालक कोई प्रश्न पूछता है तो सही सही उत्तर दें। उन्हें प्रश्न पूछने के लिए कभी डांटे फटकारे नहीं और ना ही उन्हें सबके सामने अपमानित करें। नंबर 2, बालक के कल्पनात्मक एवं असाधारण विचारों का सम्मान करें। रोमन का 3, बालकों को स्वयं करके सीखने का अवसर दें, इससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। रोमन का 4, सृजनात्मक बालकों का विशेष ध्यान दें और उसे सही मार्गदर्शन दें। रोमन का 5, बालकों में आत्मविश्वास जागृत करें, उसे आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें। रोमन का 6, विषय की नवीनतम जानकारी रखें तथा अपने शिक्षण प्रणाली को आधुनिकता के साथ लाएं। नंबर 7, बालकों को रोचक ढंग से पढ़ाएं और उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने एवं साहस का भाव विकसित करने में अपना सहयोग दें। नंबर 8, शारीरिक स्वास्थ्य। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य से स्वस्थ बालक ही सृजन कर सकता है, क्योंकि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब बालक स्वस्थ एवं निरोग रहता है तो उनमें सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने एवं सृजन शक्ति की क्षमता का विकास होता है। वह अपनी चिंतन एवं कल्पना शक्ति द्वारा नवीन वस्तुओं को सृजन करता है। वहीं बीमार बालक अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान रहता है, वह उदास, निराश, क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी दशा में सृजन की बात सोचना भी बेमानी है। नंबर 9, बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जिन बालकों की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, उनमें सृजनात्मकता भी अधिक होती है, क्योंकि वे अपने चिंतन एवं तर्क शक्ति से मौलिक विचारों का उत्पादन करते हैं, नवीन खोज करते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं। अतः सृजनात्मकता बालक के बौद्धिक विकास पर भी निर्भर करता है।